एक साथ उच्चारण करेंगे। लोकों में इन अध्यायों में या इन ग्रंथों में हमें कृष्ण नहीं मिलते हैं तो हमने एक सुंदर उदाहरण दिया था कि किस तरह, आप लोगों को याद है उदाहरण? क्या उदाहरण दिया था? गन्ने का उदाहरण दिया था कि जिस तरह हम लोग उसमें से रस निकाल देते हैं और उसके बाद वो सूखा हो जाता है वो गन्ने का, और वो कोई उपयोग नहीं होता है उसका। उसी तरह अगर शास्त्रों से, इन ग्रंथों से कृष्ण को अलग कर दिया जाए, उसका सार निकाल दिया जाए, तो शास्त्रों में कुछ नहीं रह जाएगा, केवल शुष्क ज्ञान रह जाएगा, सूखा ज्ञान, शुष्क दर्शन। तो इसलिए शास्त्रों में समझने लायक अगर कोई चीज है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, अगर वेदों में जानने लायक कोई चीज है तो वो मैं हूं। तो ये चर्चा हम लोग कर रहे थे, भागवतम का एक श्लोक हम लोग सुन रहे थे जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। किसी को ध्यान है वो श्लोक या भगवान के गुण? उसमें से हम लोगों ने कई गुणों पर चर्चा की थी, देख के बता सकते हैं। तो ये श्लोक था भागवतम से कि भगवान की क्या स्थिति है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम्। भगवान के गुणों का वर्णन, क्योंकि ये अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है, तो हम लोगों ने सुना कि भागवतम भी बताता है भगवान के वर्णन। विशुद्धम, भगवान शुद्ध हैं, केवलम ज्ञानम प्रत्यक सब जगह हैं, सम्यग अवस्थितम सारे स्थानों पर वो उपस्थित हैं, सत्यम और एक ही सत्य हैं भगवान श्री कृष्ण। इस जगत में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे चीजों के पीछे अपने जीवन को लगाते हैं, लेकिन अंत में पाते हैं कि वो सब झूठ है। हमारा सबसे बड़ा समय या सबसे ज्यादा समय हमारा जाता है अपने संबंध बनाने में, परिवार बनाने में। बचपन से हम लोग बनाते हैं, एक छोटा सा बालक होता है वो अपना संबंध बनाता है पहले अपने पिता से, अपने माता से, आसपास के वातावरण से, अपने समाज से, आगे चलकर उसका विस्तार होता है, फिर वो एक परिवार बनाता है और संबंध बनते हैं। लेकिन जिस वक्त मृत्यु आती है केवल उस वक्त वो व्यक्ति समझता है कि ये सारे जो संबंध मैंने बनाए जीवन भर ये व्यर्थ हैं, झूठे हैं, क्योंकि मृत्यु के समय वो जान पाता है कि इन संबंधों को जिन्हें मैंने जीवन भर मेहनत करके स्थापित किया। कई बार लोग अपने संबंध बनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनके लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन केवल संबंधों को बनाए रखने के लिए। लेकिन अंत में क्या पाते हैं, मृत्यु के समय क्या मिलता है? उन्हीं संबंधों को जिन्हें बनाने के लिए हम लोग जीवन भर प्रयास करते हैं, अपना सारा जीवन दे देते हैं, केवल उन कुछ संबंधों को टिकाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, अंत में वो टूट जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों ने गजेंद्र की कथा सुनी है, किस तरह गजेंद्र जीवन भर अपने परिवार के साथ, अपने पत्नियों के साथ और अन्य हाथियों के साथ आनंद लेता रहा, सोचता रहा कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी रक्षा करेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है कि जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे सैनिक हैं, ये जो मेरे घर वाले हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरे सैनिक हैं, आत्म सैन्य। लेकिन क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि मूर्खता है, भले ही उन्हें वो स्वयं आत्म सैनिक समझता है, पत्नी को, देह को, बच्चों को, देह पत्र कल्पतरादिषु आत्म सैनिक्षु, आत्म सैनिक मानता है, लेकिन ये आत्म सैनिक ही अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने गजेंद्र की कथा में देखा, गजेंद्र पुकार रहा था, सब खड़े थे, वही उसकी पत्नी, वही बच्चे, वही मित्र, सब खड़े थे वहां पर। गजेंद्र जिसका पैर उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, पुकार रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। उस समय उसे ये ज्ञान हुआ कि ये जो मैंने संबंध जीवन भर बनाए हैं, ये व्यर्थ हैं, झूठे हैं संबंध। इसलिए हमें जानना चाहिए, हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए जो देखकर भी अनदेखा कर देता है। पश्यन अपि न पश्यति, देखता है इस जगत में क्या हो रहा है लेकिन अनदेखा कर देता है। उदाहरण दिया जाता है एक चोर का। हम देखते हैं जगत में कितने चोर हैं, बहुत सारे चोर हैं, कहां भी जाइए, जहां भी आप जाते हैं वहां चोर पाते हैं, मंदिरों में भी चोर हैं। हम तिरुपति गए थे तब हमने वहां भी सुना था, वहां पर और हुआ भी था, कई हम लोगों के साथ जो गए थे उनके धन को भगवान ने उनको धनहीन कर दिया था। तो मंदिरों में भी हैं ये सारे चोर। ये देखते हैं कि दूसरा पकड़ा गया है। जैसे गुरुवार के दिन तिरुपति में विशेष दिन होता है, नेत्रोत्सव, उस दिन सारे चोर पकड़े जाते हैं, ऐसा बताया। वहां पर जो आंकड़े हैं वो देखकर पता चलता है कि गुरुवार के दिन बहुत सारे चोर पकड़े जाते हैं, और किसी दिन पकड़े नहीं जाते, कि गुरुवार के दिन भगवान की आंखें खुली रहती हैं, उनका जो तिलक है, जो लोग तिरुपति गए हैं उन्होंने देखा है तिलक भगवान का यहाँ तक रहता है, लेकिन गुरुवार के दिन केवल तिलक ऊपर रहता है, आंखें खुली होती हैं। तो उस दिन बहुत सारे चोर पकड़े जाते हैं। तो दूसरे जो अन्य चोर हैं वो ये देखते हैं किस तरह वो पकड़ा जाता है और पुलिस वाले किस तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। आप लोगों ने अगर कभी देखा है किसी चोर को या किसी गुंडे बदमाश को जब पुलिस पकड़ती है तो कैसे व्यवहार करती है, कोई प्यार से बिठा कर नहीं ले जाती है, या ये प्रभु जी बैठी है, प्रसाद वरसाद की अरेंजमेंट करते हैं, डंडे मारते हैं, मार पड़ती है, घसीटते हुए ले जाते हैं, लातों से मारते हैं। ये जब हम लोग देखते हैं तो क्या वो चोर नहीं देखता है? वो भी देखता है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी ज्ञान नहीं लेता है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग देख रहे हैं इस जगत में। जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु के निकट होता है, उस समय वो जान लेता है कि ये सब मैंने जो इतना जीवन में कार्य किया है व्यर्थ है। कोई उसे बचा नहीं पाता, कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाता, करना भी चाहे तो। हो सकता है कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको अपने पुत्र से बहुत प्रेम है, उसके पुत्र को भी उससे बहुत प्रेम है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। करोड़ों रुपया भी लेकर वो अपने पिता को बचा नहीं सकता है। तो ऐसे संबंध व्यर्थ हैं, झूठे हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं। पश्यन अपि न पश्यति, लेकिन नहीं देखते। इसलिए हमें अपना संबंध भगवान से स्थापित करना चाहिए, असली संबंध। सारा जीवन हम लोग परिवर्तन घूमते रहते हैं, ये चक्र है, इसीलिए इसे चक्र कहा जाता है। चक्र का अर्थ क्या है? हर क्षण परिवर्तन है हमारे जीवन में, हर क्षण परिवर्तन है। आज हम लोग किसी और स्थिति में हैं, कल किसी और में होंगे, एक क्षण बाद किसी और स्थिति में हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, हो सकता है सुनते सुनते अगले ही क्षण उनके हृदय में ये जागृत हो जाए ज्ञान, और वो इस जगत से अनासक्त हो जाए, तो अगले क्षण ही व्यक्ति बदल सकता है। वैसे भी हर क्षण हम लोग बदलते हैं, संसार चक्र में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो इस भौतिक जगत का परिवर्तन है, ये जो चक्र है, ये हमें किस ओर ले जाता है? बंधन की ओर बांधता है। जब तक हम लोग इस चक्र में रहते हैं, ये सोचते हुए कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम केवल बंध रहे हैं। जिस प्रकार एक मक्खी एक जाले में फंस जाती है, मकड़ी के जाले में, और वो निकलने की कोशिश करती है, अपने पंख फड़फड़ाती है, बाहर निकलने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन जितना ही वो कोशिश करती है उतना और उलझ जाती है। इसी तरह हमारी भी, हमारा भी प्रयत्न है, हमारी भी कोशिश ऐसे ही है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, लेकिन उस नए की खोज में हम लोग बार बार उस चक्र में फंसते जाते हैं। और इसका कारण यही है कि हम लोग अपना संबंध भगवान से नहीं बना पाते। इस जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जाने की इच्छा नहीं करते, इसी में यहीं पर शांति, यहीं पर आनंद लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उस मकड़ी के जाल में हम लोग बार बार फंसते जाते हैं। ये भी एक जाल है, इसे माया जाल कहा जाता है। भगवान की शक्ति ने एक जाल बनाया है और उस जाल में हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन अपने बल पर, अपने पंख फड़फड़ाकर हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उसमें और फंसते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आकर उस जाले को काट दे, जैसे कोई मक्खी अगर फंसी है और कोई व्यक्ति उसे देखे और उस जाले को काट दे, तो मक्खी अपने आप मुक्त हो जाती है। इसी तरह हम लोग जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, हमें कोई चाहिए कि वो आकर इस जाल को काट सके, हम अपने बल पर नहीं काट सकते हैं, और ऐसा जाल एक गुरु काटते हैं। लेकिन गुरु से ये जाल कटवाने की एक योग्यता है और उस योग्यता को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। शृणु, सुनो। तो जब हम श्रवण करते हैं तब हम लोग इस जाल को काट सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए हम लोगों को यह संबंध भगवान से स्थापित करना चाहिए, यह जानना चाहिए कि सत्यम केवल भगवान है, एक ही सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामेव केवलम। केवल एक ही सत्य है इस जगत में। इसको अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो वो फिर कभी उस जाल में नहीं फंसता है। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं मुक्त होना बहुत कठिन है, अनासक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि आपको मुक्त होना या भक्त बनना कोई कठिन नहीं है। व्यक्ति एक क्षण में भक्त बन सकता है, जैसे हम बता रहे थे एक क्षण में परिवर्तन होता है। केवल हमें यह जान लेना है कि एक ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण। अगर हम ये जान लेते हैं बाकी सब मिथ्या है, तो हम लोग अपने आप अनासक्त हो जाएंगे। क्या आप किसी झूठी चीज से अपनी आसक्ति बढ़ाना चाहेंगे? आपकी आसक्ति होगी? हम आपसे कहें कि आपके पास में एक व्यक्ति खड़े हैं, करोड़पति व्यक्ति हैं, आप अगर इनको पकड़ लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई है ही नहीं, आपको कोई दिख ही नहीं रहा है, आप जानते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, क्या आप उस व्यक्ति से आसक्त होंगे? क्या उस व्यक्ति को आप गले लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? आपको पता है ये झूठ है ही नहीं यहां पर। दूसरी तरफ अगर कोई सत्य आपको दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है, तो आप उस ओर जाएंगे। तो अगर हम ये जान लें कि एक ही सत्य है इस जगत में, भगवान श्री कृष्ण, तो हम किसी और चीज की ओर नहीं जाएंगे। इसीलिए शास्त्र बताता है सत्यम। आगे बताया जाता है कि भगवान सत्य तो हैं, लेकिन पूर्णम, पूर्ण भी हैं। हम लोग अपूर्ण हैं, हमारा अस्तित्व अपूर्ण है। दरअसल देखा जाए तो हमारा अस्तित्व है ही नहीं, भगवान से अभिन्न हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये तो हम लोग मानते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं गुलाम नहीं होना चाहता, लेकिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। क्या स्वतंत्रता है हमारे पास? इसलिए हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि हम पूर्ण से जुड़े हुए नहीं हैं अभी, इसलिए अपूर्ण है। अगर हमारा हाथ हमारे शरीर से अलग चला जाता है तो हाथ अपूर्ण है, अपने आप में हाथ पूर्ण नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। अपने आप में हमारे शरीर का कोई अंग पूर्ण नहीं है। आंखें आप निकाल दीजिए, क्या फायदा है? क्या आंखें अलग से रहकर देख सकती हैं? क्या हमारा हाथ अलग से रहकर काम कर सकता है? हमारे पांव अलग से रहकर चल सकते हैं? जब वो इस शरीर में जुड़ते हैं, पूर्ण से जुड़ते हैं, तब वो पूर्ण हो जाते हैं, तब उनका कोई उपयोग होता है। इसी तरह हम लोग जीवात्मा हैं, इस समय भगवान से अलग हो गए हैं, अपने अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान बताते हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। संघर्ष कर रहे हैं, कर्षति क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है संघर्ष का? भूल चुके हैं ममैवांशो। भगवान बोलते हैं, आप लोग भूल गए हैं कि आप मेरे अंश हैं, जिसके कारण संघर्ष हो रहा है। जीवन में कितना संघर्ष है व्यक्ति के जीवन में, हम कई उदाहरण इतने समय में देख चुके हैं। किसी को अपने रहने के लिए संघर्ष है, किसी परिवार में आपस में संघर्ष है, किसी को दो रोटी खाने के लिए संघर्ष है, किसी को रहने के लिए संघर्ष है। व्यक्ति का जीवन का संघर्ष केवल खाना पीना रहना और सोना, इसमें रह गया है। जीवात्मा को संघर्ष इसलिए नहीं करना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए लेकिन इंद्रियों के संग नहीं, इंद्रियों से परे जाने के लिए। हमारा संघर्ष इंद्रियों के साथ हो रहा है। मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। छह इंद्रियों से हम संघर्ष कर रहे हैं और जब इस संघर्ष के परे जाएंगे तब हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। क्योंकि सब चीजों को पूर्ण बनाना ये हमारे लिए संभव नहीं है। केवल हम पूर्ण से जुड़ सकते हैं, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब हम पूर्ण कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे हाथों का और आंखों का, हाथ अगर अलग है अपूर्ण है, लेकिन अगर हाथ हमारे शरीर में है तो यह भी पूर्ण है, कार्य कर सकता है, उपयोगी है। इसी तरह जीवात्मा को भगवान से जुड़ना है, संबंध स्थापित करना है, तब वो पूर्ण कहलाता है। लेकिन भगवान पूर्ण है, ना उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, ना उनका अस्तित्व अपूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते, उपनिषद बताता है। भगवान पूर्ण है और उन पूर्ण से अगर कोई चीज निकल भी जाती है तो भी वो पूर्ण रहते हैं। ये भगवान का गुण है, इसलिए बताया जाता है सत्यम पूर्णम अनादि अंतम। अनादि है और अंत है, हर चीज की शुरुआत भगवान है, हर चीज के आदि भगवान है और हर चीज का अंत भी भगवान है, चाहे हम इस तथ्य को स्वीकार करें या ना करें। जीवात्मा की शुरुआत भगवान है, इस जीवन की शुरुआत भगवान है, भगवान से ही तो होती है। भगवान की इच्छा के बिना ये भौतिक जगत ही प्रकट नहीं होता। भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के दृष्टिपात के बिना इस जगत में कोई हलचल नहीं होती। भगवान जब तक दृष्टिपात नहीं करते हैं, जीवात्माएं इस भौतिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाती। जीवात्माओं का आदि भगवान है। यहां जब हम आज श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे तो बहुत सुंदर श्लोक में यही बात भगवान स्वयं बताते हैं। इस श्लोक का, इस अध्याय का 20वां श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान बताते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आदि, मैं आदि हूं, अंत च, मैं ही अंत हूं, और न केवल आदि अंत, मध्यम च, मैं मध्य भी हूं। अहम आदिश्च मध्यम, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आदि, अहम मध्यम, अहम अंत, स्वयं बता रहे हैं भगवान भूतानाम। तो जीव का आदि भगवान है, जीव के मध्य भगवान है, जीव का अंत भगवान है। मृत्यु होती है, इस शरीर की जो अंत है वो क्या है? मृत्यु। और मृत्यु क्या है? भगवान इसी इस अध्याय में, बहुत सुंदर अध्याय है हम सबके लिए, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मैंने पहले ज्ञान दिया है उससे आगे अब सुनो, परमम वचः। यहां पर बताते हैं भगवान, मृत्यु सर्व हरश्चाहम। तो मृत्यु भी भगवान है, काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेते हैं। तो अहम आदिश, तो अनादि अंतम, पूर्णम अनाद्यम अंतम, निर्गुणम नित्यम अद्वयम। भगवान निर्गुण हैं। इन पर यह बहुत विवाद का विषय बन गया है। शास्त्रों से इस शब्द को लिया जाता है, भगवान निर्गुण हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवान के गुण नहीं हैं, इसलिए भगवान का कोई आकार नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व है, उसका जिसका आकार है, उसके गुण होंगे। लेकिन यहां पर शास्त्रों में बताया जाता है निर्गुणम, उनके गुण ही नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, उनके आकार नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रकाश है, अनंत है, असीम है। हां भगवान है अनंत, असीम है, निर्गुण भी है, लेकिन निर्गुण का अर्थ है भौतिक गुणों से परे, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। उनका सारा शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित और आनंद, उनमें कोई भौतिक गुण हो ही नहीं सकते, इसीलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। भगवान के गुणों को समझना ये कठिन है, और जब व्यक्ति भगवान के गुणों को नहीं समझ पाता तो उन्हें निर्गुण निराकार प्रस्तुत करता है। हमारे अंदर ये गुण है, कहना चाहिए कि हम जब किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो हम उसे नकार देते हैं, उसके अस्तित्व को नकार देते हैं, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हमने कोई चीजें नहीं देखी हैं, अगर कोई आकर कहता है तो हम कहते नहीं, संभव नहीं। लेकिन इसी तरह जब भगवान के गुणों को नहीं देख पाते हैं तो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है। भगवान को नहीं देख पाते हैं इसलिए कहते हैं भगवान का आकार नहीं है। भगवान का आकार भी है और भगवान निराकार भी है, ये दोनों गुण भगवान में हैं। अगर हम आधा कहेंगे तो इसका अर्थ है हमने भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जाना है। तो इसलिए ये शास्त्रों के जो शब्दों को हमें समझना चाहिए आचार्यों की वाणी से। इसलिए बताया गया है निर्गुणम नित्यम अद्वयम, नित्य है भगवान। कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान आज हैं कल नहीं रहेंगे। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बता चुके हैं, ऐसा कभी नहीं है कि कभी मैं नहीं रहा हूं या तुम नहीं रहे हो। भगवान नित्य हैं, सदैव हैं, शाश्वत हैं, नित्यम। आत्मा भी शाश्वत है क्योंकि भगवान का अंश है। अद्वयम, अद्वयम का अर्थ होता है अद्वितीय, उनके समान कोई नहीं है। हो सकता है कोई भगवान के समान, इतने सारे गुण किसी में हो सकते हैं? अद्वयम। इसलिए ये जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हम लोगों ने सुना था कि नवा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, परम गुह्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं उसमें। लेकिन पहले ही श्लोक में दसवें अध्याय के भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लाभ के लिए अब ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, अर्थात परम गुह्य ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं, अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने वाले हैं। इसलिए यह अध्याय हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही अर्जुन से कि सुनो श्रुणो परमम वच। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है, अब ध्यान से सुनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले 9 अध्यायों में भगवान ने जो कहा वो महत्वपूर्ण नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो कहा एक एक शब्द भगवद गीता का महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने को वो प्रस्तुत करते जा रहे हैं हम लोगों के सामने। ये भगवद गीता ये भगवान के अस्तित्व को हमारे सामने प्रकट करती है। ये एक शुरुआत से लेकर ये एक चेन है, एक श्रृंखला है भगवद गीता। कोई ऐसा नहीं है कि एक पहले अध्याय में भगवान के जो मन में आया उन्होंने कहा, दूसरे अध्याय में जो आया, फिर तीसरे अध्याय में कुछ और ध्यान आया, चौथे अध्याय में कुछ और ध्यान आया तो भगवान ने बताया। श्रृंखला है और इस श्रृंखला के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं हम सबके सामने। इसीलिए अंत में अध्याय में 18वें जब अध्याय में भगवान को जब समझ लेंगे व्यक्ति, तब उस स्तर पर आ सकेंगे सर्वधर्मान परित्यज्यम। भगवान ने शुरुआत में नहीं कहा क्योंकि अपने आप को प्रकट नहीं किया पूर्ण रूप से, तो कैसे कहते सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। लेकिन जब अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया, अपने ऐश्वर्यों को दिखा दिया, अपनी भक्ति को बता दिया, सारे गुणों को बता दिया, तब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अब मेरी शरण में आओ। तो इसीलिए ये जो श्रृंखला पहले अध्याय से चल रही है ये आगे आगे बढ़ती जाती है। ये कमल पुष्प के समान है जिसकी एक एक पंखुड़ी खुल रही है धीरे धीरे, और अंत में पूरा पुष्प हमारे सामने होगा जिसको हमें केवल समर्पण करना है। इसलिए धीरे धीरे भगवान इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। 9वें अध्याय का ज्ञान भी महत्वपूर्ण था, लेकिन 10वें अध्याय के ज्ञान में भगवान कह रहे हैं उससे भी आगे का ज्ञान, उससे भी महत्वपूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अपने ऐश्वर्यों को प्रकट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। तो ये संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, श्रुणु सुनना श्रवण। इस तरह अगर हम लोग भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, भगवद गीता भागवतम के श्लोकों को हम लोग उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, तब हमारे जीवन में हम लोग भगवान को ला सकेंगे, उन्हें जान सकेंगे। अन्यथा केवल हम लोग जीवन व्यर्थ करेंगे। भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना, ये जीवन का सार है। हम लोग कई बार यहां सुन चुके हैं ये सब, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इस दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं केवल भगवान के विषय में बात करता हूं, मैं केवल भगवान के विषय में सुनता हूं। ठीक है, सुनना हमें बहुत पड़ता है, बाहर जाइए तो बाहर क्या, कभी कभी तो हमें मंदिरों में, यहां मंदिर में भी बैठकर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले यहां पर कुछ एक मेला लगा हुआ था तो हम लोग दिन भर श्रवण कर रहे थे, तो हमें भी सुनना पड़ता है। लेकिन कम से कम बोलना, कितने लोग हैं जो केवल भगवान के विषय में बोलते हैं? कौन ऐसे दावे के साथ कह सकता है कि हां मैं केवल भगवान के विषय में बोलता हूं? लेकिन हमें वही करना चाहिए, वही जीवन का सार है। उनका गुणगान, कम से कम उनके गुणगानों को सुनना चाहिए। हम लोगों को एक नियम बनाना चाहिए कि हम दिन में कम से कम एक श्लोक याद करेंगे जिसमें भगवान का गुणगान है। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं जिनके द्वारा, जिनके उच्चारण करने मात्र से हमारे हृदय में आनंद आता है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हम एक भक्त से बात कर रहे थे, उनका बाहर से फोन आया था। वो बता रहे थे कि उनको केवल भगवान का स्मरण होने से आनंद आ जाता है। उनके घर में नव शिशु, नया शिशु आए हैं, बच्चा पैदा हुआ था, तो ये जो छोटा सा बालक बालिका थी, बालिका पैदा हुई, तो उनको स्मरण हो रहा था भगवान का उस समय, वो उसको संबंध उसका स्थापित कर रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरी कोई पुत्री हुई है, वो संबंध कर रहे थे कि एक जीवात्मा यहां पर आई, ऐसा वो स्वयं बता रहे थे हमें। और क्योंकि वो स्त्री रूप में थी तो वो स्मरण कर रहे थे एक आलवार का, आप जानते हैं उन आलवार का नाम आंडाल, तो वो स्वयं बता रहे थे कि मुझे तुरंत उनका स्मरण हो आया क्योंकि वो एक ही स्त्री थी सब आलवारों में, और केवल स्मरण होने से मेरे हृदय में बहुत आनंद हो गया है। तो हमने जब सुना तो हमें सुनकर केवल आनंद हो गया कि देखिए कितना भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है कि केवल स्मरण होने से उन्हें हृदय में आनंद आता है। इसलिए सुनना और बोलना कृष्ण के बारे में चाहिए ताकि कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण के भक्तों का स्मरण हो। जब हम लोग सड़कों पर जाते हैं लोग हमें देखकर कहते हैं हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा वाला आ गया, हरि बोल, ऐसा आनंद होना चाहिए उस समय कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक जीवात्मा को भगवान के नाम का स्मरण कराया है, उसके मुख से उच्चारण।
बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं वो, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। वल्लभ, श्री वल्लभ यानी श्री मतलब लक्ष्मी जी, और वल्लभ यानी उनको जो प्रिय हैं। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, तो ऐसे कई नामों का वो गुणगान उस श्लोक में करते हैं और अंत में वो प्रार्थना करते हैं आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। आलापिनम मतलब आलाप यानी बोलता रहूं मैं, आलापिनम प्रतिदिनम हर समय हर दिन इतनी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद, हे मुकुंद केवल इतनी प्रार्थना कीजिए कि मैं इन नामों का उच्चारण, ये जो मैंने बहुत सारे नाम दिए श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, ये सारे नामों को जो मैं गुणगान कर रहा हूं इसको केवल मैं प्रतिदिन आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद, हे मुकुंद मैं प्रतिदिन इनका उच्चारण कर सकूं। इतने सुंदर सुंदर जो श्लोक हैं इनको हमें दोहराना चाहिए। जैसे यही श्लोक बहुत सुंदर है, इसको अगर हम लोग याद करें और बार बार इसका गुणगान करें, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, तो इसको याद कर करके भगवान के गुण याद आते हैं। नाथेति नाग शयनेति जगन निवासे आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। हम लोग फिल्मों के गाने याद करते हैं, हमने देखा है कि घरों में छोटा सा जब बच्चा होता है तो माता पिता उसको गाने सिखाते हैं, वो सीख जाता है अपने आप, क्योंकि दिन भर वही सुनता है तो और क्या सीखेगा, और सीख के वो अपनी टूटी फूटी भाषा में या तोतली भाषा में जब वो गाना गाता है तो माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी आता है उसको बुलाते हैं बच्चे को, बेटा वो जरा शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, तो वो बेटा फिर वो करके दिखाता है, अच्छा वो वाला गाना सुना तो वो वाला गाना सुनाता है, अच्छा वो वाला गाना सुना तो बेटा कहते नहीं 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 सुनाओ फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा, अच्छा ठीक है, तो वो खड़ा होकर गाना सुना देता है। तो ये हमारी सभ्यता हो रही है, अभी हम लोग ऐसे बच्चों को सिखा रहे, लेकिन ये सिखाना चाहिए उनको। हमारे भक्त समाज में होता है, हम लोग देखते हैं हर एकादशी को कैसे बच्चे आकर यहाँ पर श्लोकों का उच्चारण करते हैं, भजन गाते हैं, तो ये होना चाहिए। कितना सुंदर भजन है, भगवान का वर्णन है इसमें, श्री वल्लभेति वरदेति, इसको गाना चाहिए और गाने में भी सुंदर लगता है। तो हमें ऐसे याद करने चाहिए जिससे भगवान के ऐश्वर्यों को, भगवान के गुणों को हम लोग सीख सकें, और ये लोगों को सुनाना चाहिए। जैसे हम बता रहे थे कि व्यक्ति का एक क्षण में जीवन बदल सकता है, तो हमारे बोलने से भी हो सकता है दूसरों पर प्रभाव पड़े, इसलिए हमें केवल कृष्ण कथा करनी चाहिए, अगर हम दूसरी कथाएं करेंगे, जैसे हमने बच्चे का उदाहरण दिया, हम उसको बताएंगे कि आप वो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की तरह नाचिए, तो बच्चा बड़े होकर क्या चेतना लेकर पैदा होगा, आई मीन बड़ा होगा। और फिर जब बड़ा हो जाता है तब माता पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। बचपन से तो आपने ही बिगाड़ा है उसको, बचपन से आप सिखा रहे हैं उसको फिल्मों के गाने, और जब बड़ा होकर वो अपना पूरा दिन थिएटर में बिता रहा है तो क्यों रो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, पहले बच्चा नाच रहा था, अब आपको नाचना चाहिए। और यही होता है, पहले वो बच्चे को नचाते हैं, बाद में बच्चा उन्हें नचाता है, जीवन भर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हो सकता है इससे किसी के जीवन में प्रभाव पड़े। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम बताते हैं आपको। एक बार बहुत सारे मेंढक, मेंढक जानते ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, बेडुक। तो बहुत सारे वो बेडुक वो जा रहे थे, तो एक बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें दो मेंढक गिर गए और वो बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर आने के लिए, जंप कर करके, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो बाकी जो मेंढक थे उन्होंने कहा कि बहुत गहरा है, कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, व्यर्थ है, नहीं हो सकता। फिर भी वो कोशिश कर रहे थे, जंप लगा रहे थे, ऊपर आ रहे, आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे नहीं देखो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उनमें से दो में से जो एक था उसने सुना और निराश हो गया और उसने जंप लगाना छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया उधर ही। लेकिन जो दूसरा था वो कूदे जा रहा था और सब कह रहे क्यों बेकार में कर रहे हो, नहीं हो सकता, इतना श्रम कर रहे हो, इतना श्रम कर रहे हो, नहीं होगा, मरोगे तुम, इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, कोई नहीं बचा सकता। सब वहां पर ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन यह था कि सुनी नहीं रहा, जंप लगाया जा रहा, लगाया जा रहा, लगाया जा रहा। बहुत देर करते रहो, चिल्लाते रहे, चिल्लाते, उनको भी दुख हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई नीचे तो जा नहीं सकता था उतारने के लिए। तो सब चिल्ला रहे थे नहीं नहीं मत आओ मत आओ मत करो, लेकिन वो कूदे जा रहा था। और अंत में ऐसा हुआ कि एक बार उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो बाहर आ गया किसी तरह। तो जब बाहर आया तो सब लोग उससे पूछने लगे कि अरे हम इतना आपको कह रहे थे, आपको ऐसे कैसे इतना विश्वास था कि आप आओगे ही बाहर, वो देखो दूसरा वो तो मर गया, उसने सुने हमारी बात, हम लोग इतना आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे नहीं होगा मत आओ मरोगे, लेकिन फिर भी आप लगे थे, ऐसा कैसे विश्वास था आपके अंदर, क्या हुआ? तो सुनने लगा, उसको कुछ समझ नहीं आया, और तब उसने ऐसा अब इशारों से उन्हें बताया, यानी उनकी भी कोई भाषा होगी, ये उदाहरण है इसलिए आप लोग ज्यादा डीप में मत जाइए। उसने भाषा से कुछ बताया उन्हें कि उसने बताया कि देखिए मेरे कान बंद हैं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग ऐसे चिल्ला रहे थे तो मुझे लग रहा था आप मुझे उत्साह दिला रहे हैं कि चलो चलो करो करो आ जाओगे आ जाओगे आ जाओगे, तो उस उत्साह के कारण मैं चले जा रहा था और आप लोग और जोर से चिल्ला रहे थे, मैं और जोर से कूद रहा था, और इस उत्साह के कारण मैं बाहर आ गया। तो इस उदाहरण से क्या सीखना चाहिए हमें कि वो तो मरने वाला था, दूसरा मर गया, यानी उसको हम डिस्करेज कर रहे थे, उसको कह रहे थे तो मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, उसको वो लोग कह रहे थे, मर गया, उसने सुन लिया। इसी जगह अगर वो लोग एनकरेज कर रहे होते, उसको उत्साह दिला रहे होते, नहीं नहीं हो सकता है, कमान आओ आओ आ जाओ और एक बार, तो हो सकता है वो जो दूसरा मर गया वो भी बच जाता है कि नहीं। तो हमारे बोलने का प्रभाव कितना पड़ता है लोगों पर, ये देखिए। तो हम लोग जाकर अगर पिक्चरों की बातें करेंगे तो क्या होगा, वो मेंढक कौन सा होगा, वो मर जाएगा। लेकिन अगर भक्ति के विषय में बोलेंगे, ठीक है वो आज नहीं उत्साह दिखाएगा, फिर से उसको उत्साह, नहीं नहीं आओ, हो सकता है, हो सकता है, नहीं नहीं प्रभु मैं सुबह मंगल आरती हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं हो सकता है, आ जाओ आ जाओ, एकादशी के दिन आओ, हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं एक दिन आओ, आज महीने में एक दिन आओ, अच्छा ठीक है कभी तो आ जाएगा, तो ऐसा उत्साह उसको दिलाना चाहिए। तो भले ही वो मेंढक बहरा है, यानी जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं आओ आओ, वो बहरा है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी आपके उत्साह दिलाने से एक दिन वो भक्ति में आ जाएगा। इसलिए ऐसा हमें कार्य करना चाहिए, कि बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, ये जानना चाहिए। इसलिए अगर हम लोग केवल कृष्ण कथा करेंगे, लोगों को अपनी अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बताएंगे, तब ये लाभ होगा। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या कहना है, बुक उठाइए, प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो जाकर बता दीजिए, बस इससे ही लोगों को लाभ होगा। लोगों को जीवन में क्या चाहिए, हम शुरुआत में ही कह रहे थे कि कितना जब हम लोग संबंध स्थापित करते हैं कष्ट भोगते हैं, क्योंकि झूठ है, मिथ्या है, इसके लिए कष्ट भोग रहे हैं। तो लोगों को क्या चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसे क्या चाहिए? हम लोग उसको जाकर थोड़ा सा अगर सांत्वना देते हैं तो व्यक्ति खुश हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दुखी है, उसको आपका धन सुखी नहीं कर सकता, उसको आपका यश सुखी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी थोड़ी सी सांत्वना उसको सुखी कर देती है। सांत्वना समझते हैं आप लोग? मराठी में क्या बोलते हैं सांत्वना? हाँ, धीर, धीर नहीं, हाँ, सांत्वना बोलते हैं। सांत्वना समझते हैं ना सब लोग? हाँ, यानी उसको दिलासा दिलाना। जैसे समझिए किसी के कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो गया, तो उसको जाके बोलना कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बताना कि भाई अभी क्या है, जो हो गया हो गया, भगवान की इच्छा है, अगली बार और जोर से तैयारी करो, पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं, छोड़ दो अभी सब, ऐसे इसको दिलासा नहीं बोलते हैं। तो दिलासा देने से बहुत लाभ होता है। एक घटना हुई थी, दो व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल में थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का जो कमरा था, हमने ये शहर आपको पहले बताया था, सुना है आप लोगों ने? अच्छा, अगर सुना भी है तो फिर से सुनिए, क्योंकि बहुत सुंदर उदाहरण है, इस सब्जेक्ट पर है इसलिए हम बता रहे। तो ये दोनों हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का जो बेड था, एक ही रूम में थे, एक व्यक्ति का जो बेड था वो खिड़की के पास था, और दूसरे व्यक्ति का जो बेड था वो थोड़ा सा दूर था, और दोनों बहुत बीमार थे। इस जो खिड़की के पास वाला व्यक्ति था ये भी बहुत बीमार था, और उधर वाला व्यक्ति ये भी बीमार था। तो जो उधर वाला व्यक्ति था जो खिड़की के पास नहीं था, ये जगत से बोर, क्या बोलते हैं, एकदम दुखी हो गया था, जीना नहीं चाहता था अपनी अवस्था के कारण, और ऐसा चाहता था कि बस मैं अब कैसे भी देह छोड़ दूं, खत्म, मेरे को जीवन में कोई, दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये बाहर हर रोज एक कार्य किया करता, खिड़की से बाहर देखकर उसको बाहर क्या हो रहा है उस विषय में बताता। तो कभी कभी वो खिड़की के बाहर देखता और कहता कि बहुत सुंदर बाग है, सुंदर सुंदर फूल हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पर लोग हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं। तो ये व्यक्ति सुनता, उसको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जा नहीं सकता था उठकर, केवल सुनता था कि ऐसा ऐसा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर वो बताते कि देखो लोग जा रहे हैं, सड़क है, सड़क पे गाड़ियां हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अचानक किसी दिन कहता, आज उत्सव मनाया जा रहा है, लोग बहुत आनंद में हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें उसको बताता रहता। और हर रोज का ये नियम था, हर रोज वो सड़क पे क्या हो रहा है, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, वो उसको बताया करता। और ये व्यक्ति रोज सुनता, बहुत आनंद में रहता, और धीरे धीरे ये सब सुन के जीवन के प्रति उसकी रुचि बढ़ गई। उसकी रुचि समाप्त हो गई थी जीवन से, ये क्या जगत बेकार है ये, लेकिन इतना सब सुना उसने कि देखो लोग आनंद में हैं, कितना अच्छा है, फूल है, प्रकृति है। अचानक कहता, देखो बारिश हो रही है, बहुत आनंद है। ऐसे सुन सुन के उसके हृदय में जीवन के प्रति रुचि जागृत हुई। और एक समय, कुछ समय बाद, जो व्यक्ति खिड़की के पास था उसकी मृत्यु हो गई। वो जो बीमार था, बीमारी वो सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब इधर वाले इसको पता चला तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि यही एक व्यक्ति कितना मुझे दिलासा दिलाता था, कितना कहता था जीवन के विषय में कि कितना आनंद है, और हर रोज बाहर जो होता था वो मुझे बताता था। तो जब वो बेड खाली हो गया तो उसने हॉस्पिटल वालों से एक प्रार्थना की। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहां जो व्यक्ति था उसने मेरी बहुत मदद की है, केवल उसके कारण आज मैं जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, मैं जीना चाहता हूं, नहीं तो मैं जीना नहीं चाहता था, मैं मरना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे बाहर क्या हो रहा है वो बता बता के मेरे अंदर जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न की है। तो मेरी एक इच्छा है कि कृपया मुझे भी वहां आप उस बेड पे दे दें, ताकि मैं बाहर देख सकूं कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने बहुत समय से बाहर नहीं देखा था, अर्थात आप सोचिए, वो बहुत समय से बीमार था, ऐसा उसके बारे में था कि वो कई सालों से बीमार था घर पे और फिर हॉस्पिटल में, तो उसने बाहर का जगत देखा ही नहीं था, इसीलिए जीवन के प्रति रुचि समाप्त हो गई थी। तो अब वो देखना चाहता था कि इतना सुंदर वर्णन इतने दिनों में उसने सुना है। आप सोचिए कि आपको कोई वर्णन करता रहे तो आपकी इच्छा नहीं होगी देखने की, होगी कि नहीं होगी? सब लोगों की होगी, लेकिन इतने समय से आप लोग आध्यात्मिक जगत का वर्णन सुन रहे हैं लेकिन किसी की इच्छा नहीं है जाने की, है क्या आपकी इच्छा? कितने लोग आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाइए। भगवान के पास कितने लोग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं, हरि बोल। कुछ लोग दोनों हाथ उठा रहे हैं, हम जल्दी जाना चाहते हैं। तो सुनने से रुचि बढ़ती है। आप लोगों को कैसे रुचि आई है? आपने सुना ना आध्यात्मिक जगत में ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, तो सुन सुन के उसकी रुचि जीवन के प्रति बढ़ गई थी, इसलिए वो वहां गया। और जब उसको बेड पर शिफ्ट कर दिया, सब हो गया, तो सबसे पहला काम वो क्या करना चाहता था? खिड़की के बाहर देखना चाहता था जीवन क्या है, कैसा है रंगीन जीवन। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो क्या देखा उसने? उसने देखा कि दरअसल खिड़की के बाहर एक दीवार थी, उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं था उधर, केवल दीवार थी। होता है ना, आपने देखा हॉस्पिटल्स में कभी खिड़की के बाहर एक दीवार हो जाती है बंद, कुछ नहीं दिखता है। तो वह हैरान हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और तब उसको समझ में आया कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई वो केवल उसकी मदद कर रहा था, केवल उसको दिलासा दिला रहा था, केवल अच्छी अच्छी बातें बताकर उसको जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहा था, बाहर कुछ भी नहीं था। भले ही उस व्यक्ति ने झूठ कहा, सत्य नहीं कहा, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में उसने रुचि उत्पन्न की। तो हमें अपने शब्द, अपनी वाचा पे क्या कहना है, किसको क्या प्रभाव पड़ता है, ये सोचकर हमें कहना चाहिए, जिसके द्वारा हम किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकें। हम बता रहे थे कि ये चक्र है, ये परिवर्तन चक्र बदलता रहता है, लेकिन यहां इस भौतिक जगत का जो परिवर्तन है ये हमें बंधन में बांधता है, क्योंकि परिवर्तन मतलब हम लोग भोग चाहते हैं, सही बात है? परिवर्तन मतलब हम लोग कुछ नया चाहते हैं और ज्यादा भोग करना चाहते हैं। आज हम लोग एक दो रूम के फ्लैट में हैं, कमरे में हैं, तो हम परिवर्तन चाहते हैं, क्या कम से कम चार रूम का तो होना चाहिए, गेस्ट आते हैं उन कितनी तकलीफ होती है, उसी कमरे में कैसे रह सकते, चार कमरे का हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा बंगलो होता तो अच्छा था, लॉन भी नहीं है, कैसे करेंगे, फ्लैट में तकलीफ होती है, यहां से आवाज आती है, वहां से आवाज आती है, एक बंगला होना चाहिए, छोटा सा बंगला, नहीं तो घर, घर हो गया तो एक बड़ा बंगला होना चाहिए, साथ में सर्वेंट क्वार्टर भी होने चाहिए। तो भोग बढ़ता जाता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा धन कमा रहा है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया, सोचता है कितना कठिन है, थोड़ा सा कुछ बढ़ जाता, परिवर्तन हो जाता, 2 का 4,000 हो जाता तो मैं बस मेरा जीवन सुखी, 4 हो जाता है तो सोचता है 4,000 ठीक है, वो उस समय के लिए ठीक था, अभी तो क्या है, महंगाई बढ़ गई है, 4,000 में क्या होता है, कम से कम 8-10,000 होता तो मुझे चिंता ही नहीं रहेगी परिवार की, 8-10,000 हो जाता है तो बोलता है ये तो ठीक था, क्योंकि जब उसकी कमाई 1,000 रुपए थी तो वो सड़क पे जो स्टॉल लगता है वड़ा पाव का वो उसमें खाता था, फिर उसकी कमाई बढ़ गई तो एक फास्ट फूड जॉइंट में जाके खाने लगा, और बढ़ गई तो एक रेस्टोरेंट में जाके खाने लगा, और बड़ी तो एसी रेस्टोरेंट में जाके खाने लगा, और बढ़ गई तो 5-स्टार होटल्स हैं, यहां नहीं है वैसे लेकिन बाकी जगहों पर है। तो परिवर्तन, तो ये परिवर्तन हमें कहां ले जा रहा है? भोगों की ओर। इसीलिए कोई सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हम यहां हैं तो यहां से बंबई जाना चाहते हैं, बंबई में है तो अमेरिका, अमेरिका में है तो चांद पे, कहीं ना कहीं तो संतुष्टि नहीं है। लेकिन भगवान बताते हैं आप सारे ब्रह्मांड में घूम लीजिए, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, सारे ब्रह्मांड घूम के आपको आना यहीं पड़ेगा। तो जब सारा ब्रह्मांड घूम के हमें यहीं आना है तो क्यों इच्छा करें ब्रह्मांड घूमने की, फिर यहीं से क्यों नहीं वापस चले जाएं? इसीलिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, ये भगवान इसलिए इस अध्याय में प्रकट कर रहे हैं ताकि उनको सुनकर हम उनको स्मरण करें, उनके प्रति रुचि उत्पन्न करें, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करें, जिसके द्वारा हम अपने धाम वापस जा सकें। क्योंकि अगर हम लोग इस जीवन का उपयोग नहीं करते हैं भगवान के धाम वापस जाने के लिए, कुछ और कार्यों के लिए करते हैं, तो हमें फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। जन्म है, मृत्यु है, और सबकी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े राजनीतिक हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। सबको देह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक देह है। केवल अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाता है तो वो ये जान लेता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं केवल शरीर छोड़ूंगा, और शरीर छोड़कर भगवान के धाम अपने असली घर में वापस जाऊंगा। आप सोचिए हम लोगों की कितनी बड़ी मूर्खता है, अपना घर छोड़े हुए, अपना ऐश्वर्य छोड़े हुए यहां पर भिखारी बने घूम रहे हैं। जॉब दे दो, मुझे बिजनेस दे दो, कौन भिखारी नहीं है इस जगत में? बड़े बड़े बिजनेसमैन भी भिखारी हैं, खाली नाम है उनका। बड़े भिखारी, छोटे भिखारी, मीडियम भिखारी, और उसके पीछे छोटा भिखारी। जो बड़े भिखारी हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भीख मांगते हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, वो अमेरिका से लोन लाते हैं या अमेरिका में जाके मांगते हैं। जो उनसे कम के हैं वो राष्ट्रीय स्तर के भिखारी हैं, उनकी सारी ब्रांचेस राष्ट्र में है। बड़ा बड़ा वो लोग ऐड देते हैं, हमारी 300 शाखाएं हैं भारत में, यानी 300 जगहों पर भीख मांगने के केंद्र खोले हुए हैं उन्होंने। व्यापारी और क्या करते हैं, यही है ना, बिजनेस दे दो हमें, धन कमाना, धन मांग रहे हैं। जॉब करता है वो भी भिखारी है, पैसे के लिए भीख मांगने के लिए थोड़ा सा काम करके भीख मांगते, मांगते ही है ना। मांगना भिखारी मतलब केवल वही नहीं होता जो बिना काम के भीख मांगता, सभी भीख मांग रहे हैं। हमारा देश, देश के देश भीख मांगते हैं, फिर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत बात तो छोड़ दीजिए। तो हम सब अपना ऐश्वर्य छोड़कर, और कितना ऐश्वर्य है हमारे पास आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग कितने बड़े घराने से हैं, अंदाजा नहीं है हमें। आप कहेंगे ठीक है हमारे पिताजी करोड़पति होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 10-20 करोड़, 100 करोड़, 2000, 10,000 करोड़, और क्या होगा? ऐसा नहीं है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ऐश्वर्य है हमारे पास, और हम उसको छोड़कर यहां आए हुए हैं। हम लोग उस बालक के समान हैं जो अपने पिता से बिछड़ गया है। करोड़पति है उसका पिता, बड़ा बंगलो है, कार है, गाड़ी है, और वो बेचारा बच्चा कहीं बिछड़ गया है, सड़क पर खड़ा होकर रो रहा है, कई दिन हो गए हैं, खाने के लिए नहीं है, फटे कपड़े पहनकर घूम रहा है। तो ऐसी हमारी स्थिति है, हम लोग रो रहे हैं, हर क्षण रो रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए नहीं है, और कोई आके कह रहा है कि अरे तुम्हारे पिता का वो बंगलो है, वो देखो बड़ा, इतना बड़ा बंगलो, हाँ यहां पे दिख रहे हैं आप, पिता का बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत धन है उनके पास, नौकर चाकर हैं, खाने की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम सुखी हैं यहां पर, फटे कपड़े हैं, खाने को नहीं है, भीख मांग रहे हैं, सुखी हैं, केवल आनंद कंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन हम लोगों को यह जानना चाहिए कि ऐश्वर्य भगवान का बहुत है वहां पर, हम लोग जिसे छोड़कर आए हैं। सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग वहां पा नहीं सकते। चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, आप खड़े हो जाइए उसके नीचे, जो मांगना है मांगिए। वैसे ऐसे करते नहीं है आध्यात्मिक धाम में, आप ऐसे मत सोचिएगा कि आध्यात्मिक धाम में हम जाकर बस खड़े हो जाएंगे, अच्छा ये दे दो वो दे दो, कोई नहीं करता है, क्योंकि आध्यात्मिक धाम में केवल शुद्ध आत्माएं जाती हैं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। वो मांगते भी हैं तो भगवान की सेवा के लिए, अगर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों की भी कामना करेंगे तो भगवान की सेवा के लिए, ऐश्वर्यशाली वस्त्र चाहिए भगवान की सेवा के लिए, बहुत फर्स्ट क्लास फीस्ट चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान खाने चाहिए। तो ऐसी कामनाएं ऐसे स्तर पर जब हम लोग आएंगे तब हम लोग सही में जा सकेंगे भगवान के धाम, भगवान को पा सकेंगे। तो हमें ये जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व माया मयम जगत, केवल माया है, मिथ्या है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम, केवल भगवान श्री हरि का नाम यही सत्य है। और इसको अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी सफल, नहीं तो भौतिक दृष्टि से केवल आनंद कंद है। आनंद दिखेगा लेकिन वो केवल एक छाया है, भक्ति असली आनंद है, केवल आनंद कंद। इसलिए आप सबसे विनती है, आप लोग पूरी दृढ़ता से इस भक्ति मार्ग में लगिए। यहां जो है भगवान भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम वच, तो इस परम वचन जो आगे बोलने वाले हैं भगवान, इसको सुनिए। ये भगवान का आदेश है। भगवान जब कहते हैं, हमने पहले भी बताया था कि भगवान जब कुछ कहते हैं तो भक्तों के लिए आदेश होता है, अभक्तों के लिए प्रार्थना होती है या ऐसे ही कुछ शब्द हैं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान का एक एक शब्द आदेश है। तो इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामि। आपके हित के लिए बता रहा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं, मेरे हित के लिए नहीं। भगवान का कोई हित नहीं है इसमें। हम लोग अगर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे, भगवान का कोई हित नहीं है। किसका हित है? हमारा हित। इसलिए भगवान कह रहे हैं, आपके हित के लिए बता रहा हूं मैं, शृणु मे परमं, ध्यान से सुनो। तो आप लोग आगे से अगले जो मंगलवार हैं उनमें ध्यान से शृणु मे परमं वचः, इन परम वचनों को सुनिए, ताकि अपने जीवन को आप सफल बना सकें, लोगों के जीवन को सफल बना सके। हमारा कार्य केवल अपने जीवन को नहीं सफल बनाना है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना नहीं कहा कि आप अपना जीवन सुधार लो बस बहुत है। उन्होंने कहा, आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, आपको जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो, सार्थक करने के बाद क्या करना चाहिए? दूसरों का परोपकार, जीव दया। तो इसलिए आज से आप लोग ये प्रण कर सकते हैं, अगर करना चाहें, कि हम कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कठिन है ना? बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर ये आप करें कि केवल कृष्ण के विषय में कहेंगे, कृष्ण कथा करेंगे। आप लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आके भी कृष्ण कथा कीजिए। हमने सुना है मंदिर में आकर भी बातें क्या होती हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, कल खाना क्या बनाया, आपके घर में तकलीफ है, अरे क्या हो गया, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसके घर में ऐसा हो गया, ये सब नहीं। कृष्ण को मत भूलिए। उस ये सब वो गन्ने के निचोड़ा हुआ टुकड़े के समान है, रस निकल जाएगा फिर। केवल कृष्ण कथा कीजिए। हम आते क्यों हैं यहां पर मंदिर में, क्या ये सब करने के लिए? नहीं, कृष्ण कथा करनी। तो कृष्ण कथा कीजिए, जीवन को सफल कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I'm
कृपा।